हमारी तरफ से चल रही थी, उस सोने शाम कल ही शुरू कर सकेंगे इंशाल्लाह। पूरा आज आप लोगों की नजमा बाजी क्लास हुई थी। अच्छा, पिछले हफ्ते उन्होंने भी छुट्टी दी हुई थी या उनकी क्लासेस चल रही थी? छुट्टी थी पिछले हफ्ते उनकी। अच्छा ओके, चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिल लजीन अस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. तो ये आयात का सिलसिला चल रहा था, इन्ना अल्लाह काना लतीफन खबीरा तक, कि जिसमें अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम से बज़ाहिर से बराह रास्त खिताब होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के मुतालिक कुछ नसीहतें फरमाईं, उनके बारे में पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو ان میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے ازواج مطہرات کے لیے، تو کسی کو یاد ہے کہ ٹوٹل کتنے احکام تھے، نمبر آف احکام کتنے تھے، کتنے حکم ہیں تعداد کے اعتبار سے؟ پانچ. اچھا، باقی دو لوگ کلاس میں ہیں یا خالی نام لکھا ہوا ہے؟ کسی بھی سوال کا جواب کوئی کیوں نہیں دے رہا. ثنا صاحبہ واپس آ گئی ہیں، شاید 6 کو واپس آنا تھا نا. تو پانچ تھے احکام، ان میں سے خدا صاحبہ آپ بتا سکتی ہیں کہ پہلا حکم یہ کس چیز کے بارے میں تھا؟ اوپن بک کوئز ہے تو کتاب دیکھ کر کے بتائیں، پہلا حکم کس چیز کے بارے میں تھا؟ جی ہیں کلاس میں؟ پہلا حکم جو تھا وہ غیر محرم کے سامنے بولنے سے تھا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا حکم، انابیہ صاحبہ آپ کی بھی کچھ کانٹریبیوشن چاہیے کلاس میں، دوسرا حکم کس بارے میں تھا؟ یو ڈونٹ ہیو بک؟ کیوں بھائی، آپ سفر پر ہی ہیں ابھی تک؟ اچھا، اب گھر پر نہیں ہے. ویسے اس کی آن لائن جو کاپی ہے वो अगर आप एक्सेस कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। खैर कुरान तो कम से कम 7 आप खोल सकती हैं ना, कुरान होगी या कुरान का मसहफ होगा, तो अगर उसको आप खोल लें तो आयत नंबर 31 एंड 32 सूरह अहज़ाब की, तर्जुमा तो माशाल्लाह आप कर लेती हैं, तो तैयारी के बगैर भी कम से कम तर्जुमा समझ में तो उतना आ जाएगा ना क्या उसमें फरमाया जा रहा है। तो बस आप खोल के बता सकती हैं कि दूसरा हुक्म क्या था। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32, और सूरह अहज़ाब ये 33वीं आयत है, 33वीं सूरत है कुरान में, 33। क्या हुक्म बना फिर दूसरा हुक्म? घरों में रहो। ठीक है, तो पहले हमने ये अहकाम पढ़े कि औरतों की आवाज़ ये सतर होती है कि नहीं होती, तो ये तफसीर हज़रत ने बयान फरमाई थी, क्योंकि पहला हुक्म जो था वो आवाज़ के पर्दे का था और दूसरा हुक्म था घरों में रहने से मुताल्लिक। तो घरों में रहना ये पर्दे का पहला दर्जा है। अच्छा, अब हमारे बड़े मज़े मज़े के काम होते हैं, तो इस वजह से ना ये जो पहला दर्जा है इस पहले दर्जे को याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसलिए कि जब ये हिजाब का असल मकसद समझ में नहीं आता तो फिर हम बड़े यानी मज़े मज़े की कहें या अजीबो गरीब कहें जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि हम ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप नहीं जानती, इस वजह से आपके सामने बयान कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो आप बिल्कुल उनको नहीं जानते, और इंशाल्लाह आपको उनके बारे में कभी पता लगेगा भी नहीं। तो मिसाल के तौर पर आपको एक समझा रहा हूँ कि कोई साहब हैं तो उनपे व्हाट्सएप पर उनसे बात होती थी, तो किसी क्लास में उनको चूंकि शामिल किया हुआ था, तो पिछले दिनों ये आजिज जो है वो क्लासेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी एक लिस्ट बना रहा था कि भाई स्टूडेंट्स का जरा एक सामने रहना चाहिए मामला, कि कौन कौन है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है वगैरह। तो वो किसी किसी क्लास में थे, मतलब कोई ऐसी आलम आलमा वाली क्लास नहीं थी, बाहर आदमी है तो आलम क्लास में नहीं थे, लेकिन किसी और बच्चों बच्चों की क्लास में थे। तो उनको देखा तो उनका जो व्हाट्सएप प्रोफाइल था, प्रोफाइल फोटो होती है, तो प्रोफाइल फोटो पे जो है उन्होंने माशाल्लाह एक तस्वीर लगाई हुई है जिसमें कि वो और उनकी बेगम साहिबा खड़े हुए, और बेगम साहिबा जो है वो निकाब में है, नहीं निकाब पहनी हुई है, और अब निकाब जो है वो भी वैसा निकाब तो नहीं होता ना जिसमें कि आंखें भी छुपी हुई हो, हमारे यहाँ तो ऐसा निकाब अब नहीं पहना जा रहा होता आंखों वाला, तो खैर आंखें भी पूरी खुली हुई हैं, और मतलब एक अजीब सी तरीके की उन्होंने तस्वीर खींची हुई है। ठीक है, तो वो अब तस्वीर खींच करके उन्होंने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल के ऊपर लगाई हुई है। अब व्हाट्सएप प्रोफाइल, अब मैंने तो चूंकि उनको समझाना था तो इस वजह से मैंने उसको देखना था, फिर मैंने उनसे बात भी करी बाद में कि आपने क्या किया हुआ है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी कि उनकी बात समझ में आ गई, उन्होंने मान लिया, गुस्सा नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, और उन्होंने फौरन उस तस्वीर को चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन उनको जो समझाया वो यही समझाया कि आप बहुत अच्छी बात है कि आपकी बेगम निकाब कर रही है, लेकिन निकाब करने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप निकाब कर लिया है तो अब जो है वो तस्वीरें खींच करके अब आप लगाना शुरू कर दें और इस तरह लगाएं कि सारी दुनिया देख सके। यानी जो भी उनको अपने व्हाट्सएप के ऊपर ऐड किया हुआ है वो उनकी व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो देख सकता है ना, खोल सकता है ना, तो उसके अंदर उनकी बीवी नजर आ रही है, और मतलब बेशक निकाब में नजर आ रही है लेकिन क्यों? तो इस वजह से ना अब इसके ऊपर कोई सवाल करेगा भाई निकाब पहनी हुई तो हूँ या मेरी बीवी निकाब पहनी हुई तो है, तो अब आपको क्या तकलीफ है, पर्दा कर तो रही है, राइट? लेकिन इसके ऊपर क्या तकलीफ है? इसके ऊपर तकलीफ ये है कि पर्दा सिर्फ एक कपड़े का नाम नहीं होता, ये एक धज्जी का नाम नहीं होता जो कि आपने चेहरे के ऊपर लगा लिया है या आपने सर के ऊपर ओढ़ लिया, बल्कि पर्दा का मतलब जो है वो टोटल सेक्लूजन है, बिल्कुल सेपरेशन है, बिल्कुल यानी छुपाना है, पूरा छुपाना, जैसे कि आगे मजीद आ रहा है इसका तफसीर के अंदर। तो असल पर्दा तो मुकम्मल छुपाना होता है ना, ये जो निकाब वाला पर्दा है ये तो मजबूरी का पर्दा है, ठीक है, ये तो एक लोअर लेवल ऑफ हिजाब है, ये नेक्स्ट लेवल भी नहीं, ये तो लोअर लेवल ऑफ हिजाब है कि मजबूरी की वजह से जब आपको घर से निकलना पड़ता है तो अब जो है वो आप निकाब लगा के बाहर निकले, ठीक है, अब जो है वो आप लंबी चादर में अपने आप को कवर करके बाहर निकले, ठीक है। तो असल पर्दा जो है वो उसका कॉन्सेप्ट तो आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिया ना जब आपने तस्वीरें लगानी शुरू कर दी। जैसे कि शादियों के अंदर अब ऐसा भी हो रहा है कि भाई दीनदार लोगों के यहाँ शादियां होती हैं तो तस्वीरें खींचना तो शादी का फर्ज बन चुका है, वाजिब बन चुका है, तस्वीर नहीं खींचेगी और वीडियो नहीं बनेगी तो शायद निकाह ही नहीं, निकाह फासिद हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से तस्वीरें खींचनी होती हैं, वीडियो बननी होती है, तो अब जो सो कॉल्ड पर्देदार औरतें होती हैं तो वो जो है वो निकाब के अंदर तस्वीरें खिंचवानी है, मतलब व्हाट्स द पॉइंट, क्या मतलब क्या है ये, तस्वीरें खिंचवाना इतना लाजिम हो गया कि जी तस्वीर खिंचवानी है चाहे बेशक हम आप पहनी हुई। तो इसी तरीके से ना ये चीजें फिर जब आगे बढ़ती हैं तो फिर यही चीजें जो है वो एक तमाशा बन जाती हैं, और तमाशा बनने के बाद फिर शैतान उनको मजीद बुरा बनाता है कि भाई ये क्या तमाशा है, तो इससे बेहतर है कि करो ही ना, छोड़ दो उन चीजों को, खत्म करो उन चीजों को, और इस तरीके से वो पर्दे से इंसान को फिर बाहर ही निकाल लेता है। तो करना फी बुयू तो कुन्ना, असल में पर्दा ये है। तो इसके तहत हमने ये पढ़ा था कि अजवाज मुतहरात के नजदीक जो है वो घर से निकलना जायज था, ठीक है, लेकिन वो किसी तबीयी जरूरत की वजह से, जैसे कि वालिदैन से मिलना है और रिश्तेदारों से मिलना है, दीनी इल्म हासिल करने के लिए मस्जिद में जाना, अगर इस किस्म का कोई सेटअप है कि मस्जिद में पर्दे के साथ जा करके जो है वहां पर दीनी तालीम हासिल कर सकती हैं या खुतबा बयान वगैरह सुन सकती हैं, या हज के लिए, उम्रे के लिए, किसी ऐसे यानी अपने घर वालों के साथ, शौहर के साथ जो है वो घर से बाहर निकलना ताकि जो है वो तफरी तबाह का सामान हो सके। नबी सल्लल्लाहु के साथ अजवाज मुतहरात घर से बाहर निकलती थी, जिहाद के लिए भी निकलती थी, और कभी जो है वो खेल कूद के लिए भी, जैसे कि आयशा सिद्दीक़ा का वो जो दौड़ वाला वाक़या आपने यकीनन सुना होगा कि दौड़ लगाने के लिए नबी सल्लल्लाहु के साथ घर से बाहर ही निकली थी, घर के अंदर पूरी दौड़ लगाई थी। तो ये सारी चीजें सहाबियात ने की थी, और इसी वजह से घर से बाहर निकलना जो है वो नाजायज नहीं है, ठीक है, लेकिन शराइत होती हैं और इन शराइत के साथ जायज है, ठीक है, कि पर्दे के साथ बाहर निकलें, बुरके वाला पर्दा जो होता है, और दूसरी चीज ये कि ये जो तबी और शरी जरूरतें हैं इनके तहत निकलें, और बिला जरूरत जो है वो यानी खामखा बाहर निकलना कि भाई हम क्यों घर में बंद रहे, मर्द तो घर में बंद नहीं रहते, तो हम भी क्यों ना बाहर निकलें जैसे कि मर्द बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये लॉजिक जो है या ये दलील जो है वो औरतों के लिए जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरतों और मर्दों को मुख्तलिफ बनाया है, उनकी अलग जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर अलग जो है वो अल्लाह ताला ने सवाल जवाब कैसा रखा है, और औरतों के ऊपर अलग 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 सवाल जवाब का मामला रखा है, अलग जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर डाली हैं। फिर इसके तहत हमने जो मुशाजरात सहाबा कि सहाबा कराम के दरमियान जो जंगें हुई, तो उनमें से एक जंग जो कि जंगे जमल कहलाती है, तो उसके बारे में तफसीर के साथ पढ़ा था। फिर इसके बाद जो तीसरे, चौथे और पांचवें हुक्म का अल्लाह ताला ने फरमाया था कि या निसान नबी, बल्कि नहीं, इसके बाद आयत नंबर 33 के अंदर, 33 के अंदर ही वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल अूला व अकिमना सलाता व आतीना ज़कात व अतिअना अल्लाह व रसूला। ये तीसरे, चौथे और पांचवें हुक्म थे कि नमाज कायम करो और जकात अदा करो और अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, ठीक है। तो ये सारे काम करने का हुक्म दिया, और उसके बाद फिर फरमाया कि अल्लाह ताला जो है चाहता है कि अहले बैत को तमाम गंदगियों से अच्छी तरीके से पाक साफ कर दे। तो इसके तहत फिर हमने अहले बैत के बारे में तफसील पढ़ी थी कि अहले बैत के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, तो उसमें दो स्कूल्स हैं, एक स्कूल यह है कि अजवाज मुतहरात शामिल हैं, और दूसरा स्कूल यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और दामाद अली रज़ियल्लाहु अन्हा और उनकी औलाद शामिल है, और तीसरा स्कूल यह है कि दोनों शामिल हैं, अजवाज मुतहरात भी शामिल हैं और जो है वो अली रज़ियल्लाहु अन्हा का जो कुंबा था वो भी शामिल है। अब आखिरी आयत की तफसीर रह गई है तो वो हम अभी पढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि समटाइम्स स्टेइंग एट होम ऑल द टाइम कैन बी अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग, सो गोइंग आउट फॉर सम फ्रेश एयर इज अलाउड। जी, ये जो आयशा तनान के दौड़ की बात हुई थी तो ये आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी था ना इसके अंदर, ठीक है। तो ऑल द टाइम का तो कोई वो नहीं है कि जी आपने हमेशा घर में रहना है, लेकिन घर के बाहर निकलना जो है वो इन शराइत के साथ जायज है, और फ्रेश एयर ही के लिए यानी फ्रेश एयर के लिए भी बाहर निकलना जो है वो जायज है, ठीक है, लेकिन पर्दे के साथ। और ज्यादा बेहतर यह है कि गैर महरम सॉरी महरम मर्दों के साथ निकला जाए, ज्यादा बेहतर, ठीक है। लेकिन महरम मर्दों के बगैर भी जो शरी सफर से कम की मकदार होती है तो वो महरम मर्दों के बगैर भी की जा सकती है, जैसे कि आपके अपने ही शहर के अंदर वालदैन रहते हैं, दोस्त अहबाब रहते हैं, भाई बहन वगैरह रहते हैं, तो उनके घर में जाने के लिए महरम मर्दों की शर्त भी नहीं है कि साथ होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन हालात वाकयात के हिसाब से, माहौल के हिसाब से इंसान को देख के चलना चाहिए कि भाई इवन अगर आपके अपने मोहल्ले के अंदर भी आपके किसी रिश्तेदार का घर है, लेकिन मोहल्ले की गलियों के ऊपर ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे के इज्जत को खतरा है, ठीक है, जिनकी तरफ से जो है वो कोई यानी बेशर्मी वाला मामला पेश आने का खतरा है, ठीक है, तो इवन अपने मोहल्ले के अंदर भी जो है वो अकेले निकलना वो सही नहीं होगा, बल्कि मर्दों के साथ ही निकला जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मर्दों के बगैर भी जो है वो जाया जा सकता है, पूरे शहर के अंदर जाया जा सकता है, ठीक है, अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला कंट्रोल में है तो पूरे शहर में कहीं भी जाया जा सकता है बगैर बैर मर्दों के। ठीक है, तो ये तो जिसको कहते हैं ना कि ये तो उसूल हमें दीन ने बता दिए, ठीक है, लेकिन अब इन उसूलों को इंसान ने अपने ऊपर अप्लाई करना होता है ना कि जी कब जो है वो बाहर निकलना है, कब बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें ऐसा भी नहीं मुमकिन है कि आप हर वक्त जो है वो किसी शेख से मशवरा करते रहे, ठीक है ना, इसलिए कि किसी औरत ने अब बाहर निकलना है वो उस वक्त जो है वो शेख को कॉल करके नहीं पूछेगी, ठीक है, कि जी अभी मुझे बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अगरचे कि व्हाट्सएप ने आज के दौर में ये बहुत आसान बना दिया है कि अगर आगे शेख जो है वो जवाब देने के लिए अवेलेबल हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ भी सकती हैं, लेकिन व्हाट्सएप तो अभी शुरू हुआ है ना, पहले तो व्हाट्सएप भी नहीं था, तो हर वक्त यानी पूछा भी नहीं जा सकता, तो फिर इंसान कैसे फैसला करे, ठीक है। तो इसलिए इंसान का खुद दयानतदार होना, ठीक है, और यानी उसके दिल के अंदर जो अहमियत होनी चाहिए वो अल्लाह ताला की रजा वाली अहमियत होनी चाहिए कि अल्लाह ताला को मैंने राजी ही रखना है, मैंने अल्लाह ताला को नाराज नहीं करना, ठीक है। तो इस दिल की नीयत के साथ हर इंसान को अपना फैसला खुद करना होता है कि क्या मेरे लिए जायज है इस वक्त निकलना या मेरे लिए जायज नहीं है। शरीयत ने तो कह दिया कि हाँ जायज है, ठीक है, लेकिन शरीयत ने जो शराइत बताई है तो ये शराइत जो है वो इस वक्त मैं फुलफिल कर रही हूँ कि मैं फुलफिल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इंसान को ये फतवा जो है ना ये इंसान को अपने दिल से लेना पड़ता है, ठीक है, ये फतवा इंसान को अपने दिल से लेना होता है। ये नहीं मुमकिन है कि आप उस वक्त जो है वो दारुल इफ्ता फोन करें और उनको जो है वो अपने हालात बताएं और पूछें कि जी मैं अभी निकल सकती हूँ कि मैं अभी नहीं निकल सकती हूँ, ठीक है, ये कोई तलाक और निकाह वाला मसला तो नहीं है ना, ये तो रोजाना के घर से बाहर निकलने वाला मसला है, यानी रोजमर्रा का एक मसला है, ठीक है। तो ऐसे में दारुल इफ्ता से फतवा नहीं लिया जाता या किसी शेख को कॉल करके उनसे नहीं पूछा जाता, बल्कि ऐसे में इंसान अपने दिल से पूछता है, ठीक है। तो इस्तफ्ता कल्बक वाली जो हदीस है ना कि अपने दिल से फतवा लो, ये इन मौकों के लिए है, ठीक है, कि इंसान अपने दिल से पूछे कि क्या मैं अपने सिर्फ जो है वो यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी में तो बाहर नहीं निकल रहे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ बाहर निकल रही हूँ, तो ये चीज इंसान को अपने दिल से पूछनी होती है। इसी वजह से दिल जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपको सही सही जवाब देने के काबिल हो। ठीक है, दिल को ऐसा बनाना पड़ता है कि वो इन मौकों पर आपके इस जवाब, आपके इस सवाल का सही जवाब देने के काबिल हो। ठीक है, क्या मतलब इस बात का कि वो सही जवाब देने के काबिल हो? कोई बताएगा इस सवाल का क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? भाई जब आपके पास एक सिचुएशन है, ठीक है, आज जो है वो आपने घर से बाहर, आपका दिल चाह रहा है, यानी आपका आपकी तबीयत चाह रही है, दिल चाह रहे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि मेरी तबीयत चाह रही है कि जी बाहर से बाहर निकले। ठीक है, अब ये फैसला करना है कि क्या मुझे बाहर निकलना चाहिए या मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या अल्लाह ताला मेरे बाहर निकलने से राजी रहेंगे या नाराज हो जाएंगे? तो अब ये जवाब आपको कौन देगा? ठीक है, आप किसी दारुल इफ्ता फोन नहीं कर सकते। ओके, आप जो है वो शेख साहब को इमीडिएटली व्हाट्सएप लिख करके जवाब नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, शेख साहब के पास और भी काम होते हैं, वो बैठे हर वक्त जो है वो आपके व्हाट्सएप का जवाब देने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपने खुद फैसला करना है। अब ये जो खुद फैसला करना है, तो इस ये फैसला आप कैसे करेंगे? ठीक है, शोर से भी पूछ सकती हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी है, शोर से भी पूछ सकती हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जी शोर काम पे गए हुए हैं या सफर पे गए हुए हैं, आप शोर से नहीं पूछ सकते। ठीक है, आपने खुद फैसला करना है। अब यह फैसला कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे कि अभी बताया, दिल से पूछेंगे, इस्तफ्ता कलबक, ने दिल से फतवा लो। ठीक है, तो दिल से जो फतवा लिया है, तो अब दिल आपको फतवा दे भी सकता है कि नहीं? तो इसके लिए आपको बताया ना कि दिल को इस काबिल बनाना पड़ता है कि वो आपको फतवा दे सके। तो काबिल बनाना, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि काबिल बनाने से क्या मतलब है? ठीक है, इसका जरा जवाब दें, जब तक मुझे एक जरूरी काम है, वाले साहब को कुछ देना है आने के लिए, तो आप जब तक जवाब लिखें इसका। अच्छा, नफ्स के दिल पर कंट्रोल ना हो। नफ्स का दिल पर कंट्रोल ना हो। हाँ, जवाब तो आसान सा था, तो आपने सिर्फ एक ही को जवाब आता है, बाकी दो को नहीं आता। इस्लाह के जरिए हुकूफ कल्बी होगा तो हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकेंगे। मतलब दिल जो है वो अगर कल्बे सलीम होगा तो वो आपके इस फतवे का सही सही जवाब दे सकेगा, और अगर वो कल्बे सलीम नहीं होगा, यानी कल्बे सलीम ना होने का मतलब ये है कि वो कल्बे सकीम होगा, यानी बीमार दिल, ठीक है, मर्ज वाला दिल, ठीक है। तो मर्ज वाला दिल जो होता है तो वो आपके फतवे का जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है। वो आपके फतवे का जवाब, यानी आपने जो सवाल किया है उसका जवाब नहीं दे पाएगा, बल्कि होगा क्या कि आप पूछ तो रहे होंगे अपने दिल से, लेकिन जो नफ्स है ना वो आपके इस सवाल को बीच में इंटरसेप्ट कर लेगा, ठीक है, बीच में इंटरसेप्ट करके वो आपको जवाब दे देगा, दिल जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए कि नफ्स गालिब है, दिल जो है वो मगलूब है, ठीक है। तो दिल से आपको जवाब नहीं मिलेगा बल्कि आपको नफ्स से जवाब मिलेगा, और नफ्स से जो जवाब होता है वो जवाब शैतानी जवाब होता है, ठीक है, इसलिए कि शैतान नफ्स को फीड कर रहा होता है कि हाँ अब ये जवाब दो, अब ये जवाब दो, अब ये करो, अब ये करो, ठीक है। तो नफ्स ने तो अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी होती है ना, तो इस वजह से नफ्स जो आपको जवाब देगा वो शैतान वाला जवाब होगा, वो रहमान वाला जवाब नहीं होगा। अगर दिल गालिब होता, दिल सेहतमंद होता, दिल सकी, दिल सलीम होता, तो दिल जवाब दे देता, और दिल वही जवाब देता जो कि अल्लाह ताला को पसंद है, ठीक है। इस वजह से दिल को मजबूत करना, दिल को सेहतमंद करना, इसकी मेहनत जो है ना वो मुस्तकिल करते रहना चाहिए, ताकि जब ऐसी सिचुएशंस आए कि जिसमें कि आप शेख साहब से ना पूछ सकती हो, आप जो है वो किसी मुफ्ती साहब से फतवा ना ले सकती हो, यानी फतवा लेने का मतलब है पूछना, ना पूछ सकती हो, तो ऐसी सिचुएशन में तो खुद से फैसला करना है ना, तो जब खुद से फैसला करना है तो किससे पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो है वो अपने दिल से पूछना होता है, तो दिल को मजबूत बनाया होगा पहले से, तभी वो आपको सही सही जवाब दे सकेगा, वरना वो जवाब नहीं दे सकेगा, बल्कि नफ्स जो है ना वो आपके सवाल को इंटरसेप्ट करके आपको जवाब देने की कोशिश करेगा, और वो जवाब सही जवाब नहीं होगा। इसमें अकल भी शामिल होगी, जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है, ये कौन पूछ रहा है, ये आप पूछने का मतलब क्या है, या आप पूछ रहे हैं, आपसे मुराद कौन है, आपसे मुराद ही आपकी अकल है, तो अकल पूछ रही है, ठीक है, दिल से फतवा ले रही है, ठीक है, अकल पूछती है, तो लेकिन अकल जब पूछती है तो फिर पूछना तो चाह रही है दिल से, लेकिन जवाब मिल रहा है नफ्स से। अकल के ऊपर अगर खौफे खुदा के ख्यालात गालिब हों, ठीक है, खौफे खुदा के ख्यालात, अकल में क्या चीज होती है, ख्यालात होते हैं, ठीक है, तसव्वुरात होते हैं अकल के अंदर, ठीक है, दिल में ख्यालात नहीं होते, दिल में तसव्वुरात नहीं होते, ठीक है, ये ख्यालात और तसव्वुरात अकल में होते हैं, तो अगर अकल में तसव्वुरात और ख्यालात गालिब होंगे ना, ठीक है, यानी मुस्तकिल एक रील चल रही है कि भाई अगर अल्लाह ताला नाराज हो गया तो मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा, मेरी दुनिया की जिंदगी भी खराब होगी, मेरी आखिरत की जिंदगी भी खराब होगी, ठीक है, अकल में ये ख्यालात चल रहे हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन आप के सामने आएगी ना कि मुझे बाहर जाना चाहिए कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आप फैसला कैसे करेंगी जी, इसका जवाब दें। अगर अकल के ऊपर ये ख्यालात गालिब हैं तो फिर आप फैसला कैसे करेंगे, अगर अकल के ऊपर ख्यालात गालिब होते हैं ना, तो फिर आपको फतवा लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फिर आपको दिल से फतवा लेने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है, बल्कि आपकी अकल जो है ना वो खुद ही एहतियात के रास्ते को इख्तियार करेगी, खुद ही एहतियात के रास्ते को इख्तियार करेगी कि भाई मेरा निकलना जो है ना वो उसके अंदर अगर कोई बद एहतियाती हो गई, ठीक है, तो फिर मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अकल ही के लेवल पर आप फैसला कर लेंगे, आपको फतवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फतवा तो उस वक्त लेना पड़ता है जबकि अकल कोई फैसला नहीं कर पा रही हो, ठीक है, अकल फैसला नहीं कर पा रही हो ना, तब दिल से फतवा लेना पड़ता है, ओके। अकल फैसला कैसे करती है? अकल फैसला जो है वो इल्म की बेसिस पर करती है, ठीक है। ख्यालात जो चल रहे होते हैं ना, ये ख्यालात भी जो होते हैं वो इल्म ही की वजह से होते हैं। आपने जितना इल्म हासिल किया होता है आखिरत के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, तो वो इल्म जो है ना वो आपकी अकल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। वो इल्म जो है वो आपको यानी इतना मुहताज बना देता है कि आप जन्नत को कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार नहीं होते, ठीक है, और जहन्नुम का रिस्क लेने पर तैयार नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जन्नत और जहन्नुम का आपने इल्म इतना ज्यादा हासिल कर लिया है कि अब आप यानी जहन्नुम का रिस्क नहीं लेना चाहते और जन्नत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आप खुद ही जो है ना वो एक सही फैसला ले सकेंगी, ठीक है, लेकिन वो फैसला कब होगा? जब इल्म होगा, ठीक है, जब इल्म होगा। अगर जाहिल होंगी, जन्नत के बारे में पता नहीं होगा, जहन्नुम के बारे में पता नहीं होगा, और जन्नत और जहन्नुम के ख्यालात अकल में चल नहीं रहे होंगे, ठीक है। एक होता है पता होना, पता होना तो फिर आप भूल भी तो जाते हैं ना, वो बात पता तो है, आपने पढ़ी भी है, लेकिन इस वक्त आपके जहन में मौजूद नहीं है, ठीक है। पता था, पढ़ लिया था, सारी चीजें मालूम है, लेकिन इस वक्त जहन में इसको कहते हैं मुस्तहजर होना, ठीक है, मुस्तहजर नहीं है। तो मुस्तहजर नहीं है तो क्या होगा कि उनके ख्याल आपके जहन में नहीं चल रहे, अगरचे कि आपका जिसको कहते हैं ना कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर्स की कहते हैं ना एक एक होती है हार्ड डिस्क के अंदर डेटा सेव है, ठीक है ना, और एक होता है कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर भी डेटा है, ठीक है भाई। हार्ड डिस्क में तो डेटा सेव है लेकिन मेमोरी में तो डेटा नहीं है, तो फिर आपको डेटा का फायदा नहीं होगा, इसलिए कि वो तो हार्ड डिस्क में सेव है, मेमोरी में तो नहीं है ना, ठीक है। तो यही बात जो है वो ऐसे होती है कि आपको मालूम तो है जन्नत जहन्नम के बारे में, आपने पढ़ा हुआ तो है, लेकिन आपके जहन में मुस्तहजर नहीं है ये बातें। तो अगर मुस्तहजर नहीं है ना तो भी आप जाहिल ही हैं, एक तरह से जाहिल ही है वो शख्स जिसको इल्म उसका मुस्तहजर नहीं है। तो इल्म मुस्तहजर होने से फायदा होता है। बहरहाल ये काफी सारी तफसीली डिटेल हो गई इसके अंदर, मेरे ख्याल में हम आगे पढ़ने तो ज्यादा बेहतर। कोई सवाल हो तो आप फिर भी पूछ सकती हैं। आखिरी आयत है आयत नंबर 34, वस्कुर्न मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाही वल हिक्मा, और याद करते रहो वो आयात जो कि तिलावत की जाती हैं तुम्हारे घरों में अल्लाह ताला की आयात में से, और हिकमत में से जो बातें तुम्हारे घरों में चलती रहती हैं, तज़किरा होता रहता है जिनका। इन अल्लाह काना लतीफन खबीरा, के अल्लाह ताला बेशक लतीफ है और खबीर है, बहुत ज्यादा गहराई के साथ खबरें रखने वाला है, ठीक है, लतीफ है और खबीर है। यानी खबीर का मतलब होता है कि जो के सुन करके जिसको खबर मिल जाती हो, लेकिन लतीफन खबीरा वो होता है कि जो के सुने बगैर भी समझ जाता हो कि क्या बात चल रही है, यानी जो के खामोशी की जुबान भी जानता हो, खामोशी की जुबान भी सुन सकता हो, समझ सकता हो, वो लतीफन खबीरा होता है, ठीक है। हम लोग लतीफन खबीरा नहीं है, हम लोग खबीर, हम लोग यानी मुखबर तो हैं कि अगर कोई हमें खबर देता है तो हमें खबर हो जाती है, ठीक है, लेकिन किसी के दिल में क्या चल रहा है, कोई अपने मुंह ही मुंह में क्या कह रहा है, हमें उसकी खबर नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला को उसकी भी खबर हो जाती है। तो इसको कहते हैं लतीफ और खबीर। तो इसकी तफसीर में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, पेज नंबर 130, 140 पर, के 141 पर, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना, जिसमें अहले बैत का तذکرہ जहाँ पे खत्म हो गया था 141 पर पहले पैराग्राफ के साथ, तो अब दूसरे पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं। وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ آیات اللہ سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت رسول ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن کو سمجھایا کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کے علم کو حکمت میں کنورٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمارے سمجھ میں بھی آ سکے قرآن، تو اس وجہ سے حدیث کو جو ہے نا انہوں نے حکمت سے تعبیر کیا ہے. جیسا کہ عامہ مفسرین نے حکمت کی تفسیر اس جگہ سنت سے کی ہے. تو سنت سے مراد کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ جو کہ احادیث کے اندر سیوڈ ہے. اور لفظ اذکرنا کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وذکرنا کا جو لفظ ہے تو اذکرنا کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ان چیزوں کو خوب یاد رکھنا جن کا نتیجہ ان پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیات اور حکمت ہیں ان کو تم اچھی طریقے سے یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہی مستحضر رکھنا، ٹھیک ہے؟ کہ تم نے ایک دفعہ سن لیا اور تمہارے علم میں وہ شامل ہو گیا، نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا، اپنے ذہن میں مستحضر رکھنا ان کو، ٹھیک ہے؟ ان کے خیالات تمہارے ذہن میں ہر وقت چلتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب چلتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ تم ان پر عمل کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، عقل میں ایک چیز جب چل رہی ہو نا تو انسان پھر اس کے اوپر عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جی میں کیا کروں، یہ کروں کہ یہ نہیں کروں، کہ وہ کروں کہ وہ نہیں کروں. بھائی عقل میں ایک مستقل بات چل رہی ہے، تو اب عقل جو ہے وہ انسان کو ویسے ہی ڈرائیو کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو یہ حکم کر رہے ہیں کہ تم اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھو ان ساری باتوں کو. اور اس کرونا کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ کہ جو کچھ قرآن ان کے گھروں میں ان کے سامنے نازل ہوا یا جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیں، اس کا ذکر امت کے دوسرے لوگوں سے کریں، دوسرے لوگوں سے کریں اور ان کو پہنچائیں، یعنی ان کا تذکرہ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے ذہن میں بھی مستحضر رکھیں اور دوسروں کے سامنے بھی ان کا تذکرہ کریں. فائدہ، ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت قرآن یا حدیث سنے، اس پر لازم ہے کہ وہ امت کو پہنچائے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات پر بھی لازم کیا گیا کہ جو آیات قرآن ان کے گھروں میں نازل ہوں یا جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہوں، اس کا ذکر امت کے دوسرے افراد سے کریں اور یہ اللہ کی امانت ان کو پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جنہوں نے یعنی ڈائریکٹلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، ٹھیک ہے، بلا واسطہ، وداؤٹ واسطہ، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے اوپر یہ چیز واجب تھی کہ ان باتوں کو اگلے لوگوں تک پہنچائے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اوپر یہ واجب کے درجے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ڈائریکٹلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے انڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنے علماء کرام سے سنا ہے اور ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ وجوب کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن استحباب کے درجے میں ہمارے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر ہم ان کو آگے پہنچائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو گناہ نہیں ملے گا لیکن ثواب سے محروم ضرور ہو جائیں گے. تو وہی پہنچا دیں تو ثواب مل جائے گا، تو ثواب کے تو ہم ضرورت مند ہیں نا، تو پہنچا دینا زیادہ بہتر ہے. ظاہر ہے طور طریقے سے پہنچانا، یعنی ایسے نہیں کہ بس کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ کسی کے اوپر برسنا شروع کر دیں حدیثوں کے ساتھ، بلکہ طور طریقے کے ساتھ پہنچائیں تو ہمیں ثواب ملے گا. قرآن کی طرح حدیث کی حفاظت، اس آیت میں جس طرح آیات قرآن کی تبلیغ و تعلیم امت پر لازم کی گئی ہے، اسی طرح لفظ حکمت فرما کر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و تعلیم کو بھی لازم کیا گیا، ٹھیک ہے؟ لازم کیا گیا کا مطلب بھائی واجب کیا گیا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس حکم کی تعمیل ہر حال میں کی ہے. صحیح بخاری میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، لیکن اس کو عام لوگوں کے سامنے اس لیے بیان نہیں کیا کہ خطرہ تھا کہ لوگ اس کو اس کے درجے میں نہ رکھیں اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان فرمائی تھی، شاید وہ یہ حدیث تھی کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر جہنم حرام ہو گئی، है, इस तरह की कोई हदीस मेरे ख्याल में थी वो। ठीक है, तो उन्होंने लोगों से बयान नहीं किया कि लोग जो है उसको किसी दूसरे दर्जे में रख रहे हैं, यानी अमल से जो है वो गाफिल हो जाएं और बहुत ही लाइटली लेना शुरू कर दें इन बातों को। ठीक है, कुर्बानी देने की जरूरत ही ना समझें कि भाई दीन में कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, हमने तो कलमा पढ़ लिया, अब हमारे ऊपर जानम हराम हो गई। ठीक है, तो इस तरह की जो हदीस उन्होंने सुनी तो उन्होंने दूसरों को बयान नहीं किया। ठीक है, कि लोग उसको इस दर्जे में नहीं रखेंगे और किसी गलत फहमी में मुब्तला हो जाएंगे। क्या मतलब इस दर्जे में नहीं रखेंगे, यानी दर्जा क्या था? दर्जा जो है यहाँ पर उम्मीद वाला दर्जा था। ठीक है, कि एक गुनहगार इंसान को इस हदीस के जरिए से उम्मीद दिलाई जा रही थी कि देखो तुमने कलमा पढ़ा है ना, अब ये कलमा जो है वो इतना यानी इतना इसका वजन है और इतना अल्लाह ताला के यहाँ महबूब है कि ये कलमा जो है ना तुम्हें जहन्नुम की आग से बचा लेगा, तो तुम मायूसी का शिकार ना हो। ठीक है, क्योंकि मायूसी भी शैतान की तरफ से ही होती है, तो तुम मायूसी का शिकार ना हो कि जी अब तो मैं चूंकि गुनाहों से बच नहीं पा रहा हूँ, मैं नेकों की जैसी जिंदगी गुजार नहीं पा रहा हूँ, तो बस अब छोड़ दो और फिक्र करने ही छोड़ दो और अमल करने ही छोड़ दो और बस गुनाहों के अंदर, गुनाहों की दलदल के अंदर धंसते चले जाओ। ठीक है, ये भी शैतान की तरफ से होता है, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बातें फरमाई। ठीक है, तो इन बातों का ये दर्जा था, उम्मीद वाला दर्जा, मायूसी से बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु का इज्तिहाद क्या था कि लोग सुन करके ना इस बात को यानी जो है वो इस दर्जे में नहीं रखेंगे, बल्कि वो उसको जो है वो बेअमली और सुस्ती और काहिली के दर्जे में उस पर अमल करना शुरू कर देंगे, उसको लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से तो ना जैसे कहते हैं ना कि ये हदीस मुबारक जो है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ समझ में आती है, और विदाउट कॉन्टेक्स्ट जब लोग सुनते हैं तो वो उस हदीस का कोई और मानी ले लेते हैं। ठीक है, कोई गलत मानी ले लेते हैं। देखिए, उस जमाने में भी ये कंसिडरेशन उम्मत के उलमा के सामने थी, मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े आलिम ही थे ना उम्मत के। ठीक है, तो उन्होंने कंसिडर किया कि भाई ये हदीस जो है वो आम लोगों के सामने बयान ना की जाए। ठीक है, तो उन्होंने बयान नहीं की, ये खतरा था कि लोग उसको उसके दर्जे में ना रखें और किसी गलत फहमी में मुब्तला हो जाए। ठीक है, लेकिन जब उनकी वफात का वक्त आया तो लोगों को जमा करके वो हदीस सुना दी और फरमाया कि मैंने इस वक्त तक दीनी मसलहत से इसका जिक्र किसी से नहीं किया था, मगर अब मौत का वक्त करीब है, इसलिए उम्मत की ये अमानत उनको पहुंचाना जरूरी समझता हूँ। सही बुखारी में उनके अल्फाज ये हैं, फअखबर बिही माजुन इंद मौत ही तअसिमन। ठीक है, यानी इसम गुनाह को कहते हैं, तो तअसिमन का मतलब कि गुनाह से डरते हुए। यानी हजरत मौलाना ने यह हदीस लोगों को वफात के वक्त इसलिए सुना दी कि वो गुनहगार ना हो कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को नहीं पहुंचाई। ये वाकया भी इसी पर शाहिद है कि इस हुक्म कुरानी की तामीर सब सहाबाए कराम पर वाजिब, और यानी सब सहाबाए कराम वाजिब और जरूरी समझते थे, और सहाबाए कराम ने हदीस को एहतियात के साथ लोगों तक पहुंचाने का एहतमाम फरमाया था। तो हदीस की हिफाजत भी एक दर्जे में कुरान की हिफाजत के करीब करीब हो गई। इस मामले में शुबहात निकालना दर हकीकत कुरान में शुबहात निकालना है। ठीक है, तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ये बात जिक्र करके इससे जो है वो एक दूसरा पॉइंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्योंकि सहाबा कराम ने हदीस की हिफाजत को भी अहम समझा था ना, इस वजह से हदीस को जो है वो हम कम ऑथेंटिक ना समझें। कुरान के मुकाबले में तो ये कम ऑथेंटिक है। ठीक है, इसलिए कि कुरान जो है वो हदीस मुतवातर है, और हदीसों में सारी हदीसें हदीस मुतवातर नहीं है, लेकिन जो हदीस मुतवातर नहीं है वो भी सहाबा कराम की तरफ से यानी बहुत ज्यादा हिफाजत के साथ और एहतियात के साथ उम्मत तक पहुंचाई है। ठीक है, तो उनके बारे में शुबहात निकालने की जो लोग हरकतें करते हैं तो वो हरकतें सही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ये एक मुआज़ रतान वाला वाकया है, तो इससे फिर जहन में ये सवाल पैदा होते हैं कि जी जब मुआज़ रतानों ने सारे लोगों को बुला करके हदीस सुना दी, तो फिर वो वाला मामला तो खत्म हो गया ना कि जी हदीस जो है वो लोगों को समझ में नहीं आती। जब उन्होंने पहले ये समझा था कि भाई इस हदीस को लोग जो है वो गलत दर्जे में ले सकते हैं, तो फिर उन्होंने मरने के वक्त जो है वो इस अपनी समझ को कॉम्प्रोमाइज क्यों कर दिया? ठीक है, क्योंकि मरने के वक्त भी तो उनको इसी बात का ख्याल रहना चाहिए था कि लोग इसको अब्यूज कर लेंगे, लोग इसको अब्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके जवाब में दो बातें कही जा सकती हैं। एक तो ये कि मरने के वक्त उनके जहन में ना में एक दूसरी चीज अहमियत अख्तियार कर गई थी, एक दूसरी बात अहमियत अख्तियार कर गई थी, अगरचे कि वो पहली बात अभी भी अप्लाई होती थी कि लोग जो है वो उसको गलत दर्जे में ले लेंगे और गलत फहमी में मुबतला हो जाएंगे, वो अभी भी एप्लीकेबल थी। ठीक है, लेकिन एक दूसरी जो जो रीजन था वो ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गया था उनके मौत के वक्त। वो रीजन क्या था कि ये नबी अलैहिस्सलाम की एक अमानत है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाई थी। ठीक है, तो ये अमानत मैंने उम्मत तक पहुंचानी है, मैंने इसको अपने साथ लेकर के कब्र में नहीं जाना। ठीक है, तो अब ये वाला रीजन जो है वो इतना अहम उनके नजर में हो गया था कि दूसरा जो रीजन था ना उस रीजन को उन्होंने इस वक्त जो है वो यानी यानी उस इस वक्त जो है वो उस रीजन को जो है वो उन्होंने कम अहमियत दी और इस रीजन को ज्यादा अहमियत दी। ठीक है, क्योंकि मौत का वक्त ही ऐसा होता है इंसान का कि वो कोई ऐसा काम करके नहीं जाना चाहता कि जिसकी वजह से उसको जो है वो अजाब हो सके, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मेरी बात को जो छुपाएगा, जिसने इल्म को छुपाया, तो उसके उसके साथ जो है वो जहन्नुम का अजाब होगा। ठीक है, तो ये चीजें भी सहाबा कराम के सामने होती थी। और दूसरी बात यह है कि जो नबी अलैहिस्सलाम यानी जो जिन लोगों को इन्होंने सामने जमा किया और जमा करके ये बात बताई। ठीक है, तो अब ये जो लोगों को उन्होंने जमा किया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने सारे मुसलमानों को जमा कर लिया, सारे मुसलमानों को जमा करके ये वाली हदीस उनको बता दी, बल्कि ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने ऐसे यानी ऐसे लोगों को जमा किया होगा कि जो कि उनकी नजर में जो यानी तकवा वाले लोग थे। ठीक है, इस्तकामत वाले लोग थे, तो इस्तकामत वाले लोगों को जब ऐसी हदीस बता दी जाए तो उससे वो लोग जो है ना वो गलत नतीजा नहीं लेते, वो गलत फहमी का शिकार नहीं होते। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो बहरहाल नेक अमल करना ही है, वो तो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से नेक अमल कर रहा है। ठीक है, वो तो जो है वो यानी शौक से खूब अमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से ना इस हदीस को अब्यूज नहीं करेंगे कि जी बस हमने तो कलमा पढ़ लिया और अब तो हम जहन्नुम में नहीं डाले जाएंगे तो इस वजह से अमल करना छोड़ दें, नहीं, उनकी तो नेचर ही बन चुकी है नेक अमाल करना और गुनाहों से बचना। ठीक है, तो सब लोगों को तो लोगों को जमा करके जो उन्होंने हदीस सुनाई ना, तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने हर किस्म के यानी सड़क पर से भी लोगों को जमा कर लिया, गैर आलिम लोगों को भी जमा कर लिया, वो दीन में नए आने वालों को भी जमा कर लिया, उन सबको जमा करके जो है वो हदीस सुना दी, नहीं, बल्कि उसमें भी वो यानी सेलेक्टिव होंगे कि जी उन्होंने साहिब इस्तकामत लोगों को जमा करके ये वाली हदीस सुनाई। ठीक है, ताकि हदीस जो है वो उम्मत तक पहुंच तो जाए ना। अच्छा, कोई सवाल? आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما। कि बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, ईमान वाले मर्द ईमान वाली औरतें बंदगी। अच्छा, इसका तर्जुमा आप लोगों ने किया हुआ है? क्लास में तर्जुमा नहीं हो चुका है? इन आयात का तर्जुमा नहीं हुआ तो किसी ने तैयार किया हुआ है? किया हुआ तो प्लीज कर लें अभी। किसने?
अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम। अच्छा, आपने तर्जुमा करना है?
जी हजरत, सना की टर्न थी लेकिन उन्होंने मुझे कहा है वो अभी 10 तारीख तक आएंगे।
अच्छा,
जी
ओके। अच्छा एक मिनट ये दीजिएगा, मेरा हेडफोन लेकर के आ रहा हूँ। आप तर्जुमा शुरू करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
جی، آواز آ رہی ہے،
آرية
پڑھیے۔
بسم الله إن المسلمين بے شک مسلمان مرد والمسلمات اور مسلمان عورتیں والمؤمنين اور مؤمن مرد والمؤمنات اور مؤمن عورتیں والقانتين اور فرما بردار مرد والقانتات اور فرما بردار عورتیں والصادقین اور سچ بولنے والے مرد سچے مرد والصادقات اور سچی عورتیں والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین اور عاجزی کرنے والے مرد والخاشعات اور عاجزی کرنے والی عورتیں والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد فروجہم اپنے شرمگاہوں کی والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اور یاد کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ کو بکثرت اور یاد کرنے والی عورتیں اعد اللہ اور اللہ نے تیار کی اعد اللہ اللہ نے تیار کیا لہم ان کے لیے مغفرتم و اجر عظیم بخشش مغفرتم بخشش و اور اجر عظیم عظیم اجر اور اس میں قانتینا کانتا یک ندو باب نصرہ سے اسم فائل کا صیغہ جمع مذکر کا اور یہ سارے صیغے حالت نصب میں وما کانا اور نہیں وما کانا اور نہیں ہے لمؤمنین ولا مؤمنات کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے اذا قضا جب فیصلہ اذا قضا اللہ ورسولہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول امرن کسی کام کا ان یکونا کہ وہ ہو لہم الخیارت کوئی اختیار لہم ان کے لیے خیارت کوئی اختیار من امرہم ان کے کاموں میں سے ومن یعصی اور جو نافرمانی کرے گا یعصی اللہ ورسولہ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی فقد بس تحقیق زلہ زلال مبینہ زلہ مبینہ کہ وہ جا پڑا بڑی واضح گمراہی میں یا صریح گمراہی میں اس میں یاسی اسا یاسی اسیان واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف کا صیغہ وائز اور جب تقولو آپ فرماتے تھے للتی اس کو انعم اللہ علیہ جو اللہ نے انعام کیا اس پر انعم یہ باب افعال سے انعم ینعم واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ
جس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے الذی انعم اللہ علیہ جس پر انعام کیا
جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وانعمت اور آپ نے انعام کیا جس پر الیہ اس پر
علیہ
علیہ جی اس پر امسک روکے رکھ الیکا زوجکا اپنے پاس اپنی بیوی
اللہ کو آپ الیہ نہیں پڑھیں
علیکا اپنے پاس زوجکا اپنی بیوی واتک اللہ اور اللہ سے ڈرو وتخفی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے فی نفسکا اپنے دل میں ما اللہ جو اللہ مبدیہی उसको जाहिर करने वाला था, जो उसको जाहिर करने वाला था मुबदी। व तख्श नास, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते थे लोगों से। और इसमें इत्ता का ये वाहिद मुजक्कर हाजिर फेल का सीगा है, और इसमें मुबदी ये है अब्दा युबदी इब्दान बाबे फाल से, इसम फाइल का सीगा। और वल्लाहु, और अल्लाह अहक्कु ज्यादा हकदार है, अन तक्षाहु के उससे तुम उससे डरो। फलम्मा, पस जब कजा पूरी कर ली, जैदुन जैद मिन हा उससे, वतरन वतरन जरूरत, जवज
जवजना
ना हा का, जवज ना कहा, जवज ना कहा, जवज ना हमने निकाह में दिया, का आपके हा उसको लिकई, ताके ला यकूना ना हो, अलल मुमिनीना मोमिनों पर, हराजुन कोई तंगी या गुना, फी अजवाजी अदियाइहिम अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों से निकाह करने में, इजा जब कजू पूरी कर चुके,
तो
मिनहुन्ना कजू पूरी कर चुके, मिनहुन्ना उनसे वतरन अपनी हाजत। वकाना, और है अम्रुल्लाही अल्लाह का हुक्म, मफ़ूला पूरा होकर रहने वाला। और इसमें मकाना नहीं है आलन नबी जी, नबी पर मिन हरजिन कोई तंगी, फीमा इसमें, इसमें माँ जो फरजल्लाहु लहू, जो अल्लाह ने उस फर्ज मुकरर किया उनके लिए या उसके लिए, सुन्नत अल्लाही अल्लाह का दस्तूर है, फिल लजीना खलौ वो लोग जो पहले मिन कबली, मिन कबल जो खलौ गुजरे, मिन कबल पहले, वकाना और है अम्रुल्लाही अल्लाह का हुक्म, कदरन मुकर्रर किया हुआ, मकदूरा अंदाजे से, मकदूरा ये इसम मफूल का सीगा, कदरा यकदुरु वाहिद मुजक्कर।
जी
जी हजरत, यहाँ तक असाइन की थी आपने। हाँ
कदर मकदूरा तक।
जी, यस
अच्छा, 39 नहीं थी इसमें, तो यहाँ पे खत्म हो रहा था। चले ठीक है।
हजरत, कर 39। अच्छा
मिस्टेक है, तफसीर में तो यहीं तक है ना, 146 पेज।
जी,
कर ले अगर आसान है तो, आसान तो है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना अल्लज़ीना युबल्लिगुना, वो लोग जो युबल्लिगुना, बल्लगा युबल्लिगु तबलीगन, ये जमा मुज़क्कर कसीगा, रिसालतिल्लाही
रिसालात-ए-इलाही।
रिसालतिल्लाही पहुंचा, युबल्लिगुना पहुंचाते हैं अल्लाह के पैगाम, रिसालती लाही अल्लाह के पैगाम, व यख्शौनहु और इससे डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, वला और नहीं, यख्शौना और नहीं डरते, अहदन इल्लल्लाह किसी और से, किसी से सिवाय अल्लाह के, व कफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह हसीबा और अल्लाह काफी है हिसाब लेने वाला।
हसीबा, हिसाब देने वाला या किफायत करने वाला? किफायत करने वाला, ठीक है ठीक है। जरा तो तफसीर शुरू कर देते हैं जितना हो सके आज। खुलासा तफसीर भी करनी है उसकी, थानवी रहमत खुलासा तफसीर में आयत के तर्जुमे और तफसीर में फरमाते हैं कि किसी ईमानदार मर्द और किसी ईमानदार औरत को गुंजाइश नहीं है, यानी उसके लिए गुंजाइश नहीं है, जबकि अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का, गो वो दुनिया ही की बात क्यों ना हो, वजूबन हुक्म दे दें। ठीक है, ऐसे हुक्म दे दें कि जो कि मशवरातन ना हो बल्कि वजूबन हो, हुक्म के दर्जे में। ठीक है, इसलिए कि कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह की बात फरमाया करते थे जो कि हुक्म नहीं होता था, सिर्फ एक मशवरा होता था। ठीक है, तो मशवरे का मानना जो है ना, ये भी यानी अहम तो होता है, गैर अहम नहीं है, क्योंकि मशवरा कौन दे रहा है? अल्लाह के रसूल दे रहा है। ठीक है, अब अल्लाह के रसूल जो है वो जो आपको मशवरा दे रहे हैं, तो बेशक वो अल्लाह का हुक्म नहीं है ना रसूल का हुक्म है, लेकिन वो अपने किसी यानी 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 ये भी तो होता है ना, बसीरत भी तो होती है ना। ठीक है, एक एक आदमी है कि जिसको कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मुकाम दिया है, इतना इल्म दिया है, इतना तकवा दिया है। ठीक है, तो तकवा की बेसिस के ऊपर जो वो आपको मशवरा देगा, तो उस मशवरे की अहमियत, ठीक है, उसकी अहमियत तो अपनी जगह पर रहेगी ना। तो इस वजह से मशवरे को भी मान लेना जो है ना, ये भी यानी बेहतर होता है, अगरचे के ये ना मानना जो है वो गुनाह के दर्जे में नहीं आएगा। ठीक है, गुनाह किस चीज को कहते हैं? गुनाह कहते हैं जिसके ऊपर अजाब वाकई हो, ओके, जहन्नुम का अजाब वाकई हो, या दुनिया के अंदर बंदे के साथ जो है वो सजा वाला मामला किया जाए, उसको गुनाह कहते हैं, ऐसे काम गुनाह कहते हैं। ठीक है, तो मशवरे का ना मानना ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये यानी यानी कम अफजल चीज बेशक है। ठीक है, कम अफजलियत तो इसके अंदर बहरहाल हो ही ना, कि आपने ये नहीं देखा कि जी भी जो देने मशवरे देने वाले हैं वो तकवा में भी बड़े हुए हैं आपसे, इल्म में भी आपसे बड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनका जो मशवरा था वो मेरे लिए बेहतर होता। ठीक है, तो खैर इसकी और भी कुछ तफसीर है जो कि बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर वो वजूबन आपको हुक्म दे दें, तो फिर उन मोमिनीन को उनके इस काम में कोई इख्तियार बाकी रहे, ये नहीं होता। ठीक है, अब मोमिनीन को इख्तियार नहीं है कि वो चूज करें या ना करें, हालांकि इख्तियार तो है कि चूज करें या ना करें, भाई हर इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। ठीक है, तो इख्तियार ना होने का मतलब क्या है कि यानी अगर वो उस हुक्म के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। ठीक है, और मोमिनीन के लिए ये बिल्कुल भी जायज नहीं है कि वो सजा का ऑप्शन इख्तियार करें। ठीक है, किसके कहते हैं कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी सजा बर्दाश्त कर लूंगा, और पूरी जिंदगी की सजा तो मैं नहीं अपने ऊपर डाल रहा ना भाई, मैं तो सिर्फ एक मामले में सजा वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, बाकी मामला में तो मैं हुक्म के ऊपर अमल कर रहा हूँ ना। तो एक भी मामले में नाफरमानी या सजा का ऑप्शन इख्तियार करना ईमान वालों के लिए जायज नहीं है। ठीक है, एक मामले में भी, यानी इन शॉर्ट अगर हम अपने समझने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना, तो क्या होंगे कि एक गुनाह भी जायज नहीं है, एक गुनाह भी, इल्म और इरादे के साथ। यहाँ पर इल्म और इरादे की शर्त साथ लगा दें, क्योंकि बे इख्तियार गुनाह या बगैर इल्म इरादे के गुनाह तो हर इंसान से होते हैं। ठीक है, हर इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर है, लेकिन जानबूझ करके इल्म के साथ गुनाह करना ये एक भी जायज नहीं। ठीक है, तो हमारे लिए इस आयत की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होगी। और सहाबा कराम के साथ क्या था? सहाबा कराम के साथ अल्लाह ताला ने इस अंदाज में बात करी कि आपको कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल आपको कोई हुक्म दे दें तो फिर वो अपने आगे से फिर मीन मीन निकालते रहे, अपनी हुज्जत सामने बयान करते रहे और कहते रहे कि नहीं, ये अगर ये ऐसे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, मेरा ख्याल है कि ये ऐसे होना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो फरमाया कि यानी इस इख्तियार की गुंजाइश नहीं रहती कि ख्वाह करे या ना करे, बल्कि अमल ही करना वाजिब हो जाता है। और जो शख्स बाद हुक्म वजूबी के अल्लाह के और उसके रसूल का कहना ना मानेगा, वो सरी गुमराही में पड़ा। और इस वक्त को याद कीजिए, वो अल्लाह दलाल मुबीना, सरी गुमराही में पड़ा। यहाँ पर ये नहीं फरमा रहे हैं कि उसको आखिरत का अजाब होगा या उसको बदतरीन अजाब होगा, ये सब नहीं फरमा रहे, बल्कि सरी गुमराही में पड़ा, यानी उसने एक गलत काम किया, उसने एक यानी एक रास्ता इख्तियार कर लिया, गुमराही वाला रास्ता, ठीक है, वो उस रास्ते में पड़ गया। अब जब वो उस रास्ते में पड़ गया ना एक गुनाह के जरिए से, यानी एक मामले में नाफरमानी करके उसने वो रास्ता इख्तियार कर लिया, अब ये रास्ता जो है ना ये इसको बुराई की तरफ लेके जाएगा, मजीद बुराई की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सिराते मुस्तकीम से भटक चुका है, ठीक है, वो अब दूसरे रास्ते को इख्तियार कर चुका है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये इल्म और इरादे के साथ एक गुनाह करना भी जो है ना ये उस यानी ये नहीं होता कि उस एक गुनाह की वजह से जो है वो आपके सारे नेकियां जो है वो जाया कर दी जाएंगी और आपको जो है वो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, लेकिन उस एक गुनाह की वजह से आपने चूंकि गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, अब उस रास्ते पे चल करके बाद में जा करके आप और गुनाह करेंगे, अगरचे कि अभी आपने किए नहीं है ऐसे गुनाह। अच्छा, इस वक्त और उस वक्त को याद कीजिए जब आप फहमाइश और मशवरे के तौर से उस शख्स से फरमा रहे थे जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया कि इस्लाम की तौफीक दी, जो इनाम देना है ये देनी है कि मुझे इनाम देना है, यानी अल्लाह ताला ने उस शख्स के ऊपर ये इनाम किया कि इस्लाम की तौफीक। ये कौन से शख्स थे? ये हजरत जैद जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के जो गुलाम थे और बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने उनको आजाद कर दिया था, उस सामा बिन जैद रजी अल्लाह के जो वालिद थे, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम की तौफीक दी, क्योंकि सबसे पहले जो गुलाम मुसलमान हुए थे वो ही जैद रजी अल्लाह अन्हु ही थे, ठीक है। एक मिनट, सारी चीजें हो रही हैं।
मुंबई में